ओम शांति। उपनिषदों में एक राजा हिमचूड की कथा का वर्णन है। ये राजा एक दिन शिकार करते करते वन में चला गया और वहां से किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया और उसने उस राजा को अपना परिचय दिया और वहां कुछ दिन रहा। और एक दिन अचानक उसने उस राजा की बेटी को देखा और उसे देखते ही उसे लगा कि मुझे इसके साथ विवाह करना है। और उस राजपुत्री से जाकर उसने कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। परंतु ये जो राजपुत्री थी ब्रह्मज्ञानी थी, योगिनी थी, तो उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करने को राजी हूं, परंतु तुम 15 दिन के बाद आ जाना। 15 दिन के बाद मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगी। वो राजा बहुत खुश हो जाता है और जाता है घर अपने राज्य में। शादी की तैयारियां होती है, उसे लगता है इतनी रूपवती रानी इस राज्य में आ रही है तो कैसी तैयारी की जाए। सब कुछ करता है और 15 दिन के बाद उसको मिलने जाता है, उस रानी को लेने के लिए जाता है। तो वो जो राजपुत्री थी उसने क्या किया, 15 दिन तक लैक्सेटिव्स अंग्रेजी में कहते हैं, जिससे डायरिया हो जाए, जमाल घोटा होता है एक, उसका इतना सेवन किया और उसको इतना दस्त लगी और जो भी उसका स्टूल सैंपल था वो उसने अच्छी अच्छी रंग बिरंगी पॉलिथीन में रख दिया एक दूसरे कमरे में। और 15 दिन में वो इतनी कमजोर हो गई कि उसकी खाली हड्डियां दिखने लगी थी। यह प्रयोग उसने 15 दिन किया। राजा इतना खुश था कि इतनी सुंदर राजकुमारी, मैं उससे विवाह करूंगा। वहां पहुंचता है उस राज्य में, दासी से पूछता है राजकुमारी कहां है, तो वो कहती है ये है बिस्तर पर लेटी हुई। देखता है और शॉक होता है, ये कौन है, केवल हड्डियां दिख रही है, कि ये राजकुमारी है, इसको तो मैंने नहीं देखा था, वो तो बहुत सुंदर थी, उसका वो सौंदर्य कहां है। तो राजकुमारी कहती है वो मैं ही हूं और मेरा सौंदर्य अगर देखना है तो बाजू के ही कमरे में रखा हुआ है। राजा जाकर देखता है और तीव्र वैराग्य को उपलब्ध होता है, कहां देह के सौंदर्य में मैं फंस रहा था और सत्य क्या है। उस राजकुमारी से कहता है कि तुम मेरी गुरु हो, और वहीं से वो संन्यास ले लेता है और संसार का त्याग कर देता है। संसार के प्रति तीव्र वैराग, बाबा कहते हैं बेहद का वैराग। क्या हमारे मन में ऐसा वैराग है? बिना बेहद के वैराग के अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, बिना बेहद के वैराग के तुम सकाश देने की सेवा नहीं कर सकते। सकाश की क्या कोई भी सेवा नहीं कर सकते। अगर उस सेवा में वैराग नहीं है और हम उसे सेवा का नाम दे रहे तो शायद वो सेवा नहीं है, वो हमारी गलती है। अपने मैं के विस्तार को हमने सेवा का नाम दे रखा है, अपने स्वार्थ के विस्तार को मैं का नाम दिया है, सेवा का नाम दिया है, वह सेवा नहीं है। तो कुमार जीवन अर्थात धधकता हुआ वैरागी जीवन, जिसमें संसार के प्रति, यहां के व्यक्तियों के प्रति, यहां की वस्तुओं के प्रति, यहां के वैभवों के प्रति, यहां की उच्चाकांक्षा के प्रति वैराग। रिलीजियस माइंड इज नॉन एम्बिशियस माइंड। संसार जिसके लिए दौड़ रहा है वो दौड़ हमारी नहीं है। जो प्राप्ति या संसार करना चाहता है वो हमारी नहीं है। संसार जिसे सुख समझता है वो हमारे लिए विष है। संसार का जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। तीन प्रकार के वैराग है। एक है मंद वैराग, मंद है, बहुत माइल्ड, सुन के रखा है ये दुनिया विनाश होने वाली है, विनाश सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होने वाला है, कुछ नहीं बचेगा, इन आंखों से जो देखते हो आंखों सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुना है, मुरलियों में आया है, डायरियों में नोट किया हुआ है, कई डायरियां भर चुकी है, रोज ही आता है। मंद वैराग, असर होना ही खत्म हो गया है अब इन वाक्यों का। होलसेल में मौत होगा, सब सुना है, परंतु वैराग नहीं है। दूसरों को सुनाते भी है परंतु वैराग नहीं है। आज सुबह की मुरली, हंसी की कहानी, नलके पे मत बैठना, नलके पे मत बैठना, वो तोता चिल्लाता है पर खुद बैठा हुआ है। मंद है। दूसरा है मध्यम वैराग। एकदम से वैराग आता है वस्तुओं के प्रति और थोड़े समय के बाद फिर वही, बाबा कहते शमशानी वैराग। शमशान में जाओ, चिता जल रही है, देखते हैं आगे उठ रही, आग उठ रही है, लपटे उठ रही है, देखकर लगता है एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, एक दिन जो मित्र संबंधी है सब सच चले जाएंगे, माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं रहेगा। उसको देखा और वैराग। घर आए, ऑफिस गए, सब खलास। इसके लिए एक ट्रेनिंग जो करनी है, ट्रेनिंग कहो या एक अभ्यास, शमशान घाट बहुत अच्छा स्थान है वैराग उत्पन्न करने के लिए। बीच बीच में क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, क्या देखने के लिए, चिताओं को जलते हुए देखने के लिए, उसमें भी आएंगे। शमशान घाट में जो लोग रहते हैं उनको वैराग नहीं आता है, हॉस्पिटल के में काम करने वाले उनको वैराग नहीं आता। इसके लिए वैराग आने का संबंध किसी स्थान पे कंटिन्यूअस रहने से नहीं है, ना ही उस प्रोफेशन में जाने से। चित्त की दशा है वैराग। हम जा इसलिए रहे हैं वही भाव अपने अंदर तीव्र करने के लिए। यदि एक हॉस्पिटल है जिसमें इतने सारे पेशेंट्स है, सब कुछ है, वहां काम करने वाले स्वीपर लेबरर्स, किसी को वैराग नहीं आता है, वो डॉक्टर्स, परंतु हां यदि कोई ये सोचे कि मैं ये देखकर क्या सीखूं, मन की दशा कैसी है, उस पे निर्भर करता है। हम जाने का, हम जो कह रहे हैं वो खास लक्ष्य से जाने का कह रहे हैं। यदि वहां रह जाए तो शायद मुश्किल हो जाए। देखना बीच बीच में ऐसे स्थान है, संसार के दुखों का दर्शन करना, ये एक विधि है वैराग उत्पन्न करने की। तो हम बात कर रहे थे, उस पर हम फिर आएंगे, उस पर हम बात कर रहे थे मन मध्यम वैराग। अभी अभी है, अभी अभी नष्ट, अभी अभी मोह, अभी अभी वैराग। वैराग ऐसी अवस्था नहीं है कि वैराग हो गया और हमेशा के लिए वैरागी हो गए। वैरागी हो जाते हैं फिर मोह, फिर वैरागी होते हैं फिर मोह, या एक ही दिन में सुबह सुबह अमृत वेला वैरागी, 9 बजे के बाद रागी राग, फिर 5 बजे फिर वैराग जागता है काम पूरा होने के बाद। अप एंड डाउन स्टेजेस ऑफ राग विराग, राग विराग, राग विराग। तो शमशानी वैराग अर्थात थोड़े समय के लिए आया, उसको मरकट वैराग्य भी कहते हैं। मरकट अर्थात बंदर, बंदर जो होता है एक घड़ा होता है जिसमें चने होते हैं बहुत सारे, उसमें हाथ डालता है और हाथ फंस जाता है। मालिक आता है उसको इतनी पिटाई करता है, पिटाई होती है तब सोचता है इसके बाद में कभी भी हाथ नहीं डालूंगा इसमें, बहुत बुरी तरह पिटाई होती है। इस तरह हाथ डालने से चाहे कुछ भी हो जाए पर इसके चने नहीं खाऊंगा। बंदर चला जाता है, मालिक चला जाता है, कुछ समय के बाद फिर दिखाई देते हैं, विस्मृति हो जाती है उस इंसिडेंस, उस घटना, उस वाक्य, वो भूल गया। अभी फिर से हाथ डाला, फिर से पिटाई, चक्र चालू है, फिर से वही मोह, फिर से वही सब कुछ, फिर से वही लड़ाई। एक मां घर आती है अपने 2 बेटों से कहती है तुम दोनों ने फिर से लड़ना चालू कर दिया। वो कहता है नहीं मम्मी, ये तो वही पहली वाली लड़ाई है, वही पहली वाली लड़ाई, आत्मा हूं देह नहीं, संसार असार है, फिर भी उसमें सार दिखाई देता है। नित्य क्या, अनित्य क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, इसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसके लिए जो असत्य है सत्य भासने लगता है। जिस व्यक्ति से धोखा होने वाला है पता है फिर भी मोह छोड़ता नहीं है, तीसरा वैराग है तीव्र वैराग। तीव्र वैराग अर्थात जब पता चल जाए कोई बात असत्य है, मिथ्या है, असार है, तुरंत उसका त्याग कर देना। और महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है बस, जैसे भीष्म ने एक बार प्रतिज्ञा कर ली, हो गया, फिर सोचने की आवश्यकता नहीं। एक अखंड प्रतिज्ञा, श्रेष्ठ प्रतिज्ञा, जिसको एक बार छोड़ दिया वो छोड़ दिया। जिस राह पर जाना ही नहीं है उसका एड्रेस लेके क्या करोगे? जिस राह पर जाना ही नहीं है क्यों चाहिए उसका एड्रेस? तीव्र वैराग। एक पत्नी अपने पति से हमेशा कहती थी कि मेरा भाई जो है ना उसे सन्यासी बनना है, पिछले 5 साल से कहता है कि सन्यासी बनूंगा, पर बनता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, हमेशा कहता रहता है। क्या करूं, क्या उसको सिखाऊं? मतलब ये बहन भी चाहती है कि वो बने, क्योंकि भाई का संकल्प है कि सन्यासी बनना है, वैरागी बनना है, संसार को छोड़ देना है। क्या करूं, भाई पिछले 5 साल से कह रहा है। पति कहता है ऐसे थोड़ी ना सन्यास लिया जाता है। तो वो कहती है कैसे लिया जाता है? तो वो तुरंत वो पति सब कुछ छोड़ता है, सन्यासी वस्त्र धारण करता है और कहता है मैं जा रहा हूं, देखो ऐसे लिया जाता है। तुरंत, सोचा नहीं जाता है, फिर इंस्टेंट वैराग। तो 3 प्रकार है, मंद, मध्यम और तीव्र। तीव्र और लंबा समय चले ऐसा, तो इस तरह के वैराग के लिए क्या किया जाए? और बिना वैराग के अगर इस संसार में हमारा लगाव है, आसक्ति है, तो हमेशा दुख होते रहेगा, पीड़ा होती रहेगी। व्यक्ति में है तो उस व्यक्ति से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और वो कभी पूरी नहीं करेगा तो दुख होते ही रहेगा। वो एक्सपेक्टेशन छोटी से छोटी हो सकती है, हमने एक मैसेज किया उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, दुख इतनी इस तल पर हो सकती है वो एक्सपेक्टेशन। क्या किया जाए जो वैराग आ जाए? और हम देखेंगे जब जब मन वैराग की अवस्था में रहता है बहुत शक्तिशाली होता है, किसी पर निर्भर नहीं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं, अधीनता नहीं किसी भी व्यक्ति की, किसी के सहारा नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। कोई ये भी ना समझे कि दूसरे हमें समझे, हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को, हम बीमार पड़े तो देखने आए, हमें मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो देगा। क्योंकि जितनी कामनाएं मनुष्य से रखेंगे उतना बड़ा दुख। एक्सपेक्टेशंस, द ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन द ग्रेटर द सॉरो, सीधा प्रोपोर्शन है। इसलिए क्या किया जाए जो इस संसार से, व्यक्तियों से विराग हो, मन उस विराग की अवस्था में रहे। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चारों को और दुख को साक्षी होकर देखना, इस संसार को, जन्म को देखो, जन्म में कितना दुख है, मृत्यु में दुख है। यदि हमारा किसी से बहुत मोह है और कल उसकी मृत्यु हो जाए, हमने देखा है हॉस्पिटल में एक कपल घूमने आए थे माउंट अनाद्रा में, फोटो ले रहे थे, फोटो लेते लेते वो स्त्री गिर गई, तुरंत हॉस्पिटल में ले गए उनको, आए तो ब्रॉड डेड मर चुकी थी। वो जो पति अभी शादी हुई थी, 10 दिन हुए थे, सुबह से लेके रोना चालू किया उसने, इतनी जोर जोर से कि रुक ही नहीं रहा था उसका रुकना, इतना रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पुकार रहा था हॉस्पिटल के वो जो गेट है सीढ़िया बाहर काउंटर पे, वहां बैठ बैठ कर। और ये भी नहीं था कि वो एक दूसरे को पहले भी जानते थे, ऐसा भी नहीं था। एक कारण तो ये भी रहता है, वासना की अपूर्ति। एक दूसरा मरीज था जिसकी पत्नी हमारे पास एडमिट थी और उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी और उसने शरीर छोड़ा। जो पति था इतना रो रहा था, इतना अनकंट्रोलेबल था, कितना उसको दुख, इतना उसको दुख की बात मत पूछो। हमको लग रहा था, कोई कह रहे थे कितना प्यार है दोनों का, ऐसा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। तो 2 मास भी नहीं हुए थे तो वो इनविटेशन कार्ड लेके आया दूसरी शादी का, डॉक्टर साहब जरूर आना, ये संसार का प्यार है। वासनाओं को ही प्यार समझा जाता है, यहां मृत्यु दुख है बहुत। तो वैराग कैसे उत्पन्न हो? वैराग जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा। एक बूढ़े व्यक्ति को देखो और उससे सीखो। देखना चाहता है, देख नहीं पाता है, सुनाई नहीं देता है, झुक झुक के चलता है और यही अंतिम परिणति है। कहां है वो सौंदर्य, कहां है वो अकड़, वो घमंड, सब खत्म, दांत नहीं है, सब गिर गए। संसार को साक्षी होकर देखना यहां क्या क्या हो रहा है। व्याधि, व्याधि अर्थात बीमारी, बीच बीच में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना चाहिए। किस लिए, किस लिए चक्कर लगाएंगे क्या करने के लिए क्या करेंगे वहां जाके, क्या देखेंगे क्या देखेंगे हाँ जी, बूस्टिंग के लिए। जीवन का सत्य है वहां पर। वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो कारोबार है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम लक्ष्य से जा रहे हैं देखने के लिए कि ये है सौंदर्य, देह का सौंदर्य। वैराग की एक बहुत सुंदर परिभाषा है, दो शब्दों की। वैराग अर्थात संसार, असार शरीर मिट्टी, अर्थात वैराग। इस देह को मिट्टी समझना और संसार को असार समझना, ये है वैराग। क्योंकि मन में बार बार राग उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा वैराग आता है फिर राग। अब यहां बैठे हैं तो थोड़ा सा चित्त वैराग की दशा में है, यहां से बाहर जाते ही फिर राग, सतत विराग। यह अवस्था के लिए बहुत सारी स्थान है संसार के, वृद्धाश्रम। कोई कोई वृद्धाश्रम तो ऐसे है कि वो उसी शहर में उनका घर है मां बाप का, और वो लोग वृद्धाश्रम में है। बेटा उसी शहर में है पर वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, ऐसे कितने ही स्थान है, कितने ही लोग हैं। उनको देखना, उनसे सीखना, ये जीवन का सत्य है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दोष दृष्टि से। बाबा कहते ये दुनिया विकारी है, पतित है, भ्रष्टाचारी है, छींची है, तमोप्रधान है, विषय वैतरणी नदी है, बहुत सारे शब्द बाबा ने कहे हैं। क्या हम उस नजर से इसे देख रहे हैं? इस संसार का स्टडी करना और अंदर गहराई में जो राग है उसको नष्ट करना। महात्मा बुद्ध के पास जब कोई सन्यासी आता था, कोई व्यक्ति सन्यास लेने के लिए, वो कहते थे जाओ पहले 3 मास तक शमशान घाट में रहो और एक ही काम करना है सुबह से लेकर शाम तक, चिताओं को जलता हुआ देखना है। चिताओं को जलता हुआ कैसे बचा पाओगे अपने आप को वैराग से? चिताएं जल रही है, लपटे उठ रही है। दादियों ने भी एक अभ्यास जो किया था, स्वयं को मृत देखना, सफेद कपड़ा पहना दिया है, यह है शरीर, हम मर चुके हैं। अपनी ही शव यात्रा का दर्शन करना, लेके जा रहे, रखा हुआ है, जला रहे, उनकी बातें भी सुनो, क्या क्या बात कर रहे हैं लोग। कोई कोई कह रहा है अच्छा ही हुआ गया, बहुत परेशान करता था, धरती पर बोझ था। कोई कर रहे हैं कह रहा है कब तक रुकना है, भूख लग रही है, टाइम हो रहा है। सब अलग 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 देखना, हम जल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। जी, तो सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। रामायण में लिखा है सुर चाहे देवता, नर मुनि सबकी यह रीति, सबकी एक ही रीति है, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सब प्रेम स्वार्थ के आधार पर है, कोई किसी का नहीं, स्वार्थी है सब। जब तक स्वार्थ है तब तक है, तब तक मैं तेरा तू मेरी, बस इस संसार को साक्षी होकर देखना, इस संसार के दुखों को साक्षी होकर देखना, एक एक गृहस्थी जीवन को देखो क्या है उसमें, कितना द्वंद है, कितना संघर्ष है, कैसी दौड़ है, कैसी आपाधापी है, भागी रहा है व्यक्ति, कहां जा रहा है उसे ही नहीं पता। वो शमशान घाट जो है जो गांव के बाहर होता है उसको शहर के बीचों बीच रहना चाहिए, एकदम मार्केट प्लेस में बीच में, किस लिए? याद दिलाने के लिए कि यही है अंतिम स्थान, यही आओगे बच्चों, कहां जाओगे, यही अंतिम निष्पत्ति। तो जन्म का चिंतन करना, मृत्यु का चिंतन करना, बीमारी का चिंतन करना, बुढ़ापे का चिंतन करना, और एक दिन नहीं रोज रोज थोड़ा समय वैराग के लिए देना है, नहीं तो मन में तुरंत राग उत्पन्न हो जाता है, सब अच्छा लगने लगता है संसार का, कुछ भी यहां का अच्छा न लगे, ऐसी अवस्था हो। तो एक तो ये है संसार का दर्शन, दूसरा है एक पॉजिटिव मार्ग, स्वयं को ईश्वरीय अनुराग विषय विराग, ईश्वरीय प्रेम से स्वयं को इतना भर देना, इतना भर देना कि स्वतः ही संसार से वैराग हो जाए, फिर लाने की जरूरत नहीं। जो मीरा की अवस्था है, मीरा ने कोई किताबें नहीं पढ़ी, इतना प्रभु प्रेम उसके अंदर भरा हुआ है कि भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता उसको इस संसार का, इतना ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय प्रेम, रूहानी मस्ती इतनी भरी है कि निरंतर उस गोविंद के ध्यान में लगी हुई है। और यहां इस ब्राह्मण जीवन में हमें भी कैसे हम भरेंगे ईश्वरीय प्रेम से स्वयं को, मार्ग है ज्ञान और योग का, उसके ज्ञान को इतना अंदर धारण कर लो कि और किसी का प्रेम उसमें समा ना सके। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा का, सभी लिख सकते हैं, अमृत वेला स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम तुम्हें अपनी ओर ना खींचे, इतना भर दो परमात्मा प्रेम से कि किसी भी मनुष्य का प्रेम खींचना नहीं पाए हमें अपनी तरफ, क्योंकि प्रेम उसका कम है, इसके लिए बुद्धि संसार में जा रही है, ये व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, ये साधन चाहिए, वो साधन चाहिए, खींच रहे व्यक्ति, दुख देते हैं परंतु हम छोड़ना भी नहीं चाहते उनको, बंधे रहते हैं, असूक्ष्म बंधन, अनअंडरस्टैंडेबल, क्या बंधन है व्यक्ति उसी कोई समझ नहीं पाता, परंतु बंधे हैं दो व्यक्ति, जैसे कि एक शिकारी है जंगल में खो गया, तीन दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है, कोई भी मनुष्य नहीं दिख रहा है ना जानवर दिख रहा है, और अचानक पाता है कि एक शिकारी दूसरा दूर एक झाड़ के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और दूर से लग रहा है वो भी शिकारी है, भाग कर जाता है उसके पास और उससे मिलता है, खुश होता है मिलकर, और उसे पता चलता है वो भी शिकारी है, वो भी राह भटक गया हुआ है, दोनों खुश होते हैं, बाद में दोनों दुखी होते हैं, क्योंकि पहले एक भटका हुआ था, अब दोनों ही भटके हुए हैं। जैसे एक भिखारी है, उसको दूसरा भिखारी मिल गया और अब साथ साथ भीख मांगते हैं, इसी व्यवस्था को विवाह कहा है संसार ने, है किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं, आत्मा खाली है, भरपूर नहीं हुई है, और सोचते साथ साथ चल दे, अब क्या सुखी हो पाएंगे, संसार के दुखों का चिंतन। एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, घर छोड़कर चला जाता है और सीधा जाता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पे चढ़ने ही जाता है तो आकाशवाणी होती है, खबरदार नीचे उतरो, ये जो प्लेन है क्रैश होने वाला है। तो नीचे उतरता है, जाता है सीधा रेलवे स्टेशन। जैसे ही ट्रेन में चढ़ने जाता है फिर से आकाशवाणी होती है, उतर जाओ ये ट्रेन खाई में गिरने वाली है। फिर से उतरता है, सीधा बस स्टैंड जाता है, बस स्टैंड में जो जैसे ही चढ़ने जाता है फिर से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है उतर जा क्योंकि ये बस का एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो गुस्से से उस आवाज की तरफ कहता है, कौन है जो मुझे ये बता रहा है? तब क्या गला बैठ गया था जब घोड़े पर बैठ रहा था? संसारिक दुखों का चिंतन। अगर कौन है यहां पर जिन्हें अभी भी संकल्प है कि थोड़ा देख ले कैसा रहता है वो जीवन, थोड़ा सा चढ़ के घोड़े पर, सब लोग देखते हैं, फेटा सहरा लगता है, किस किस की इच्छा है? है कोई कुमार, कोई छोटा कुमार इच्छा है? कोई पूछता है कि ये शादी में घोड़ा ही क्यों, घोड़े पर ही क्यों बैठते हैं, गधे पर क्यों नहीं बैठते? उत्तर देते हैं कि दुल्हन बिचारी दो गधों को एक साथ देखेगी तो क्या हाल होगा। इसके लिए कुमार जीवन अर्थात निश्चिंत जीवन है, कोई बंधन नहीं, किसी को मनाना नहीं है, वो रूठना रूसना वो सबसे मुक्ति, नहीं तो वही करते रहो जीवन भर और फिर भी असंतुष्ट। कभी तृप्त होता है कोई, हुआ है आज तक? तो भगवान ने हमें उन सभी चीजों से मुक्त कर दिया है। इसके लिए वहां उस संसार में, उस वैवाहिक जीवन में, उस मैरिड लाइफ में क्या क्या दुख है, क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका चिंतन करके उनसे दुख मुक्त रहना और स्वयं को अपनी वाह वाह करना, वारे में निर्बंधन मुक्त आत्मा। तो स्वयं में वैराग को धारण करना है, स्वयं में वैराग को धारण करना है। जहां जहां राग है और जिन जिन व्यक्तियों में है, अगर उस संबंध की यात्रा के ऊपर चिंतन करो कि इस व्यक्ति से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये मेरी जो यात्रा है, उस व्यक्ति के संबंध की उस यात्रा में क्या क्या हुआ, पाएंगे कि दुख तो ज्यादा है सुख बहुत कम है, थोड़े थोड़े मोमेंट्स है बीच बीच में खाली सुख के, अधिक क्या है दुख। उसका चिंतन, संबंधों के दुख का चिंतन, संसारिक जीवन के दुखों का चिंतन, संसारिक जीवन का चिंतन, मृत्यु का चिंतन, जन्म का चिंतन, जरा का चिंतन, व्याधि का चिंतन, क्या क्या है ये संसार में और हम इस सबसे मुक्त है, स्वयं को ये याद दिलाना। नहीं तो कितने कुमार हमने ऐसे देखे हैं जो हमारी आंखों के सामने मधुबन में प्रतिज्ञा करके गए कि बस अभी हम जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और आने के बाद तुरंत सरेंडर, और आए ही नहीं। हॉस्पिटल में कितने ऐसे आए डॉक्टर्स एमबीबीएस के बाद और फिर पढ़ाई करने गए और वापस आए ही नहीं कभी। अभी एक से दो और दो से चार हो गए और कहते ये बच्चे भी शिव बाबा के ही है। क्या कहते हैं? ये बच्चे भी शिव बाबा के ही है। फिर कहते हैं हमको कुमार जीवन का भी अनुभव है और इसका भी अनुभव है, डबल कुमार। वो भी एक, परंतु वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हर एक का भाग्य फिर भी फिक्स्ड है, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, कितना भी रोको और कितना भी कुछ करो। और फिर कारण हजारों है, ये बच्चों को भी तो ज्ञान में लाना था, फिर तो कारण हजार दे सकते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान युक्त कारण। ब्राह्मणों की भाषा साधारण भाषा नहीं होती है, ज्ञान युक्त भाषा होती है। सेवार्थ, हर चीज में क्या लाओ, सेवा। सुविधा जनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों को, श्रीमत को मॉडिफाई करना, मोल्ड करना, जो करना है करना, ताकि कोई कुछ कहे नहीं। कोई ऐसा अगर कहते तुमको माया ने खा लिया तो कितना बुरा लगता है। इसके लिए स्व सुरक्षा के लिए कुछ तो शब्द चाहिए अच्छे अच्छे, और जो कि ज्ञान युक्त हो और जो तुरंत स्वीकार हो जाए ब्राह्मण परिवार समाज में। परंतु अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003, अव्यक्त महावाक्य, संपूर्ण पवित्रता, अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, कहीं पर भी पवित्र अपवित्रता नहीं। अपवित्रता अर्थात जैसे कि सफेद कागज पर काला दाग, अगर कोई कहता है जरा सा कर लिया, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा नहीं है, बहुत है। सुनो सभी कान खोल कर सुनो, अव्यक्त महावाक्य है ये बाबा के। कई जगह लिखा होगा, ये आपने सुना होगा, हर जगह सेंटरों पर लगा रहता है, धर्मराज का रूप है बाबा का वहां पर, यहां पर भी है, हर जगह लिखा रहता है। ब्राह्मण माना ही पवित्र, ब्रह्मा ने जो इतनी गालियां खाई क्यों खाई, पवित्रता के लिए। कितनों ने आकर समझाया ये ब्रह्मचर्य पवित्रता का हटाओ तो तुम्हारी संस्था में कितने लोग आ जाएंगे। गालियां तो इसी के वजह से खाई, और तो कोई कारण था ही नहीं। नहीं तो धर्म संस्थाओं में तो जाना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पति तो खुश हो जाते हैं अगर पत्नी भक्ति करती है तो, पर यहां तो उल्टा हुआ। बाबा ने उत्तर दिया था, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, शेर और शेरनियां चाहिए दहाड़ लगाने वाली, और इस संसार को, इस जागते हुए कुंभकर्ण को पवित्रता की दहाड़ की आवश्यकता है। तो वैराग, फिर से अपने आप को चेक करना, इस भट्टी का लक्ष्य है परिपक्व होना, भट्टी का लक्ष्य है केवल लिखना और सुनना नहीं, स्वयं की चेकिंग, सुनते सुनते ही चालू रहे, जो शब्द कानों में पड़ रहे उन शब्द शब्दों में जो अंतराल है, वाक्य वाक्य में जो अंतराल है, वो जो स्पेस है, उस स्पेस में स्वयं की चेकिंग, स्वयं को देखना। और जहां जहां जीवन में इस तरह हम बंधे हुए फंसे हुए हैं, उस तरफ से तो छूट गए, परंतु ये मेंटल मैरिजेस, मनसा में ही किसी को पकड़ रखा है, वो भी धोखा देगा। अच्छा, ओम शांति। फिर से 5 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक।